ऐसा अभिमान नहीं करते। मत सकाशात अनेक ज्ञानी नो भवंती, मेरे से तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं। श्रुतक ज्ञानी भय सकाशात अवधिक ज्ञानी नाम ज्ञानम बहुतरम, श्रुतक ज्ञानियों की तुलना में अवधिक ज्ञानियों का ज्ञान बहुत बड़ा होता है। ततो उससे भी ज़्यादा मन परे ज्ञानी नाम ज्ञानम अधिकम, मन परे ज्ञानियों का ज्ञान अधिक होता है। ततः उनसे ज़्यादा केवल ज्ञानी नाम ज्ञानम सर्वोत्कृष्टम सबसे उत्कृष्ट, अहम केन मात्र अल्पज्ञ, मैं तो कुछ नहीं लगता उनके सामने, मैं तो छोटा सा अल्पज्ञ हूँ इत्यादिकम निरहंकारत्वं विदधाति, इस प्रकार निरहंकार पने को करता है। पुनः कथम भूत है, और कैसा होता है, उत्तम तपश्चरण करणशील है, उत्तम तपश्चरण को करना जिसकी आदत है, स्वभाव है। उत्तमानि तानि च तपश्चरणानि ख्याति पूजा लाभ रहितानि, उत्तम तपश्चरण कौन से हैं, ख्याति पूजा के लाभ से रहित। अनशनाव मौदर्य आदि द्वादशविध तपश्चरणानि, 12 प्रकार के तप हैं, अनशन उनोदर आदि, तेषां करणे कर्तव्यशीलं स्वभावो यस्य स तथोक्तः, उनको करने के जो आदि हैं, जिनका स्वभाव है तपस्या करना, वैसे साधु अथवा उत्तम तपांसी अनशनादीनि द्वादश, अथवा उत्तम तप जो है वो अनशनादिक 12 है। उत्तम चरणानि और उत्तम चरण जो है वो कौन से, चारित्राणि पंच महाव्रतादीनि त्रयोदश था, 13 प्रकार का चारित्र है, कौन सा, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 13 प्रकार का चरित्र है। सामायिक आदि निवास व चरित्र 5 प्रकार का होता है, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तेषां करणे शीलम स्वभाव यस्य स उत्तम तपश्चरण शील, उत्तम तप और चरण में शील है यानी स्वभाव रखने वाले, सन ऐसा होते हुए भी आत्मन हेलनां करोति, अपने आप को छोटा समझते हैं। तपश्चरणादि गर्वम न करोति, तपस्या आदि का गर्व नहीं करते। अहं तपस्वी अहं चारित्रवान साधु इत्यादि मदन न करोति, मैं तपस्वी हूँ मैं चारित्रवान साधु हूँ इत्यादि मद नहीं करते। तथा ही उसका खुलासा क्या है, उत्तम जाति कुल रूप विज्ञान ऐश्वर्य श्रुत लाभ वीर्यस्यापि सतः, इतनी सारी वस्तुएं होते हुए भी उत्तम जाति में जन्म हुआ, उत्तम कुल मिला, उत्तम रूप मिला, उत्तम विज्ञान प्राप्त हुआ विशिष्ट ज्ञान, उत्तम ऐश्वर्य भी था, उत्तम श्रुत का लाभ भी हो गया, उत्तम वीर यानी शक्ति भी प्राप्त हो गई, फिर भी विद्यमानस्य मुने, इतने सब चीज़ें विद्यमान होते हुए भी वो मुनि तत्कृत मदावेशा भावात, इनके द्वारा किए जाने वाले मद के आवेश का अभाव होने के कारण पर प्रयुक्त परिभव निमित्ता भी माना भावो, दूसरों के द्वारा प्रयुक्त किए गए जो परिभव के निमित्त है तब भी वो अभिमान नहीं करते। देखो इतने विशिष्ट ज्ञानी है लेकिन मान लो कोई आदर नहीं कर रहा उनको, उनका आदर नहीं कर रहा या परिभव कर रहा है, उनका अनादर कर रहा है, तो भी वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास इतने गुण हैं फिर भी ये लोग सम्मान नहीं कर रहे, शांत रहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं का मतलब दो प्रकार से हो सकता है, कोई बात नहीं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो वाला नहीं, वो अर्थ ध्यान वाला कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो कोई बात नहीं है। क्या मैं इनके आदर के लिए क्या मैंने तपस्या दीक्षा आदि ज्ञान गुण आदि प्राप्त किए हैं, नहीं। मार्दवम मान निर्हरणम, मान का निर्हरण करना, अवगंतव्य ऐसा जानो, मार्दवोपेतम शिष्यम गुरवो अनुगृहणंती, मार्दव से संपन्न जो शिष्य होते हैं गुरुजन उनका अनुग्रह करते हैं, साधवोपि साधु मन्यन्ते और साधु लोग भी उनको श्रेष्ठ मानते हैं, ततश्च समग्र ज्ञानादीनां पात्री भवति, उसी से मार्दव के माध्यम से ही समग्र ज्ञान यानी केवल ज्ञानादिक का वो पात्र बन जाता है। अतः इसके कारण स्वर्गापवर्ग फल प्राप्ति, स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती मार्दव के कारण। मान मलिन मनसी और मान से मलिन मन वाले में व्रत शीलानी न अवतिष्ठन्ते, व्रत और शील स्थिर नहीं रह पाते, अवस्थित नहीं रहते। साधवश्चैनम परित्यजन्ति, साधु लोग भी उसकी संगति छोड़ देते, भाई ये तो बहुत अभिमानी है भाई चलो इनसे दूर बचो निकलो। तन्मूला सर्व आविपदायते, और उस मान कषाय के कारण सारी विपत्तियां उसके पीछे लग जाती हैं। इसलिए मान छोड़ देना योग्य है। अतः माया स्वभाव वहाँ, अब माया का स्वभाव बतलाते हैं। जो चिंते वंकम न कुणद वंकम न जंपदे वंकम न गोवदनीय दोसम अज्जवधम हवे तस। जो वांका नहीं चिंतन करते, वांका का मतलब टेढ़ा, और न वंकम कुणदी, न शरीर की छलपूर्ण कपटपूर्ण प्रवृत्तियां करते हैं, न वंकन जंपदे और न ही वाणी से टेढ़ा बोलते हैं, और निय दोषम नय गोवदी, और एक चीज और बतला दी कि अपने दोषों को छुपाते नहीं हैं। तस अज्जव धम्म हो गए, उन साधु के पास आर्जव धर्म होता है। ठीक है, स्पष्ट है। शौचत्वमाह, अब उत्तम शौच धर्म के बारे में कर रहा है। समसंतोष जलेणम जो धोवदि तिव्व लोह मलपुंजम भोयण गिद्धि विहीनु तस्स सौच्यम हवे विमलम। ये चौथे क्रम में यहाँ पर शौच धर्म को रखा गया है। वैसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 12 सणुवेक्खा में पांचवें नंबर पर शौच धर्म को दिया, चौथे पे सत्य को दिया है, और पूजा में भी चौथे पर सत्य है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आचार्यों का उल्लेख है इस ग्रंथ में, शौच को पहले रखा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने, सत्य को पहले रखा है, इसलिए किसी को गलत नहीं कह सकते अपन, क्योंकि जिन वच में शंका न धार दोनों सही है, बिल्कुल उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं अपने को, कौन सा सही है कौन सा नहीं है ये सोचने का अपन को किसी ने जज थोड़ी बनाया। तो बताने दो ना, ये तो यहाँ भी तो महाराज जी तो बता रहे ना, स्वामी कार्तिकेय मुनि हैं, आचार्य हैं, तो शौच धर्म का उल्लेख कर रहे हैं। तत्वार सूत्र में भी शौच धर्म का पहले उल्लेख है, लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो उल्लेख किया है वहां पर उन्होंने तुरीय धम्मम हवे सच्चम, चौथा धर्म सत्य धर्म है, चौथा ये जो विशेषण दिया है, तो इससे तो मतलब उन्होंने चौथा नंबर रखा ना, तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथा को अपन नकार नहीं सकते। दोनों अपने को मानने क्या नुकसान है, आत्मा में ये धर्म क्रम से थोड़ी होते हैं, पहले क्षमा होती है क्या, फिर बाद में मार्दव आता है, फिर क्रम से फिर शौच आता होगा, ऐसे क्रम से सीढ़ियों से उतरते होंगे एक एक धर्म आत्मा में, ऐसा नहीं है, ये सारे एक साथ होते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, शौच धर्म। तो ये गाथा आचार्य श्री की प्रिय गाथा है, उनने एक बार पढ़ा था और फिर उनको तुरंत याद हो जाती, और फिर इसके ऊपर से उनने उपदेश भी किया था। सन 85 की बात है, उत्तम तप के दिन 20 साल पहले। सम संतोष जलेण, समता और संतोष रूपी जल से, अथवा सम का अर्थ होता शांति, शांति और संतोष रूपी जल से जो तीव्र लोभ के मलपुंज को धोवदी धोते हैं, और भोयण गिद्धि विहीनो भोजन के प्रति गृद्धता से रहित होते हैं, भोजन में आसक्त नहीं होते, तस विमलम शौचम हवे, उनके पास ये निर्मल शौच धर्म होता है। अब इसके चार भेद बता रहे हैं आगे टीका में, अंतिम पंक्ति देखिएगा कि लोभ जो होता है चार प्रकार का होता है, स्वजीवित लोभ, पर जीवित लोभ, फिर उसके चार के और दो दो भेद कर दो स्व और पर के हिसाब से, तो आठ हो जाएंगे। तो इन सब को छोड़ देना, शौच धर्म हो गया, तो ये ख्याल में रखने की बात है। सच लोभ जो टीका है ना, उस टीका में ऊपर से पांचवी पंक्ति देखिए संस्कृत में, सच लोभ मिला नहीं मिला टीका में, ऊपर तो ग्रंथ का शीर्षक लिखा हुआ है, गाथा नंबर लिखे है, इधर पेज नंबर है, मिला, ये तो मिल गया ना, 296 पेज, अब उसके नीचे से संस्कृत की लाइनें देखो आप। अब जमणी बाजू देखना, दाहिनी तरफ, 1 2 3 4 5 मिला। सच लोभ, और वह लोभ चतुर्विध, चार प्रकार का है। कौन से? जीवित आरोग्येन्द्रिय उपभोग विषय भेदा चतुर्विध। जीवन संबंधी लोभ होता है, आरोग्य संबंधी लोभ होता है, इंद्रिय संबंधी लोभ होता है, और इंद्रिय सुखों से संबंध रखने वाला लोभ होता है। तो इन चारों प्रकार के लोभ का त्याग कर देना अपने लिए, और दूसरे के प्रति भी उसका लोभ नहीं रखना चाहिए। क्या होता है कि बहुत बारीक चीज़ है। नहीं नहीं वो संज्ञाओं से अभी बात वहाँ नहीं, संज्ञाओं की यहाँ चर्चा नहीं। संज्ञाएं तो अपने अंदर अपनी अभिलाषा रहती है, चार प्रकार की अभिलाषाओं को संज्ञा कहते हैं। आहार की इच्छा है ये, इसको उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं अपन? ये जैसा वर्णन चल रहा है उसको सीधा सीधा वैसे ही निकाले अपन। इसका अर्थ क्या कह रहे हैं? जीवन संबंधी लोभ। अब जीवन संबंधी लोभ चार संज्ञाओं में नहीं आता, परिग्रह वगैरह छोड़ो आप, जीवन का लोभ कौन सी संज्ञा है ये बताओ। जीवन का लोभ कोई संज्ञा नहीं है। मरने का भय, ये भय संज्ञा है, या सात प्रकार का कोई भी भय हो वो भय संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ जीवन की आकांक्षा रूप है लोभ है, फिर आरोग्य संबंधी लोभ, स्वस्थ बना रहूँ मैं, अथवा मेरे को जो इष्ट है। क्या होता है कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई इष्ट होता है, तो उसके बारे में उसको लगता है कि ये कभी बीमार ना पड़े, ये हमेशा तंदुरुस्त रहे। ऐसे ये भी है लोभ की पर्याय है। अपन सोचो कि भाई ये कषाय थोड़ी है, तो दूसरों का भला सोच रहे हैं, ये कोई कषाय है क्या? लेकिन यहाँ साधु के लिए कह रहे हैं, ये गृहस्थों में इसका अभाव नहीं है, लेकिन साधु के लिए कह रहे हैं कि ये सब छोड़ देते हैं साधु। आरोग्य, इंद्रिय, इंद्रिय संबंधी भी लोभ होता है, चश्मे का नंबर न बढ़े, क्या चश्मे का नंबर न बढ़े, ये जो इच्छा है वो क्या है? इंद्रिय संबंधी लोभ है। फिर उपभोग संबंधी भी लोभ होता है कि जो इंद्रियों के सुख हैं उनको लेकर के भी लोभ हो सकता है। स्वपर विषयत्वात् सब प्रत्येकं द्विधा विद्यते, ये अपने विषय में भी हो सकते हैं, दूसरों के विषय में भी हो सकते हैं। तो दो प्रकार के हो जाते हैं, स्वजीवित लोभ, परजीवित लोभ, स्वारोग्य लोभ, परारोग्य लोभ, स्वेंद्रिय लोभ, परेन्द्रिय लोभ, स्वोपभोग लोभ, परोपभोग लोभश्चेति। अतस्तन निवृत्ति लक्षण शौचम चतुर्विधमिति। इसलिए इन चार को छोड़ना, जो शौच धर्म है उसके चार भेद हो जाएंगे। जीवन का लोभ छोड़ दिया तो जीवन संबंधी उत्तम शौच धर्म आ गया। आरोग्य का लोभ छोड़ दिया, आरोग्य संबंधी उत्तम शौच हो गया। इसी प्रकार इंद्रिय और उपभोग को छोड़ने पर तत्त्व संबंधी उत्तम शौच धर्म होता है। फिर इसके आगे सत्य धर्म का वर्णन किया जाएगा। अतः सत्य धर्म माह, अब सत्य धर्म को बतलाते हैं। शौच धर्म के चार भेद आपके ख्याल में हो, जीवन संबंधी लोभ को छोड़ना एक हो गया, दूसरा आरोग्य संबंधी लोभ को छोड़ना, फिर इंद्रिय संबंधी लोभ को छोड़ना, और इंद्रियों के विषय संबंधी लोभ को छोड़ना। ऐसे चार प्रकार के लोभों को छोड़ने पर उत्तम शौच चार प्रकार का होता है। अब सत्य धर्म को बतलाते हैं। जिणवयणमेव भासति तं पालयितुम् असक्कमाणो वि व्यवहारेण विअलियम् जो वदति सो न वदति जो सच्च वाईसु। जिणवयणम् एव भासति, जिन वचन को ही भाषित करता है, निज भाषित नहीं, जिन भाषित, पत्रिका का नाम नहीं कह रहा हूं, यहां सत्य धर्म की बात चल रही है। तो जिन वर्णमेव भाषति, तो जिन वचन को ही भाषित करता अर्थात कहता है, तुम पाले तुम असक्त मानोगे, उनको पालने में भले असमर्थ हो तो भी, कहता जिन धर्म जिन वचन को ही है, और व्यवहार एण भी व्यवहार की अपेक्षा से भी अलियम न बदति, झूठ नहीं बोलता, सो सच्चवाई वह सत्यवादी होता है। समुनि सत्यवादी सत्यम वदन वदत्तेवं शील सत्यवादी सत्य धर्म परिणत भवेत, वो मुनि सत्यवादी अर्थात सत्य बोलने वाले होते हैं, सत्य धर्म में परिणत होते हैं। सकह वे कौन, तो यह जो जिन वचन में वो भाषते, जिन वचन ही बोलते हैं। जिनस्य वचनम, जिनेन्द्र भगवान का वचन, द्वादशांग रूपम जैन सिद्धांत शास्त्रम, द्वादशांग रूप जैन सिद्धांत शास्त्र स्वरूप है। वक्ति उसी को बोलते हैं, ब्रूते। एव कारणेन, एव का क्या लेना है यहाँ पर, मूल में जो गाथा में एव शब्द है ना, जिन वर्ण मेव, तो एव से क्या लेना, तो बोले एव करणेन न सांख्य सौगत भट्ट वैशेषिक चारवाक आदि परिकल्पितम, नैव वक्ति इन वचनों को नहीं बोलते। सांख्य, सांख्य मत का उपदेश जैन साधु नहीं देंगे। सौगत, सौगत का अर्थ था बौद्ध, सुगत नाम था बुद्ध का, गौतम बुद्ध का एक नाम था सुगत, तो वो भी नहीं बोलेंगे। और आदिनाथ भगवान का भी एक नाम है सुगतो हत दुर्नय, 1008 नामों में जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र में सुगत नाम भी आता। शोभनम गतम ज्ञानम यस्य सह सुगत, जिनका ज्ञान सुंदर है वो सुगत कहलाते हैं। तो सौगत यानी बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले। फिर भट्ट, फिर भट्ट वैशेषिक, भट्ट लोगों का भी कोई मत है, वैशेषिक मत है, जिनको सदाशिव कहते हैं ना, सर्वव्यापी एक ब्रह्म को मानते हैं। फिर चारवाक मत है, खाओ पियो मौज करो, पुनर्जन्म किसने देखा है, अभी जब तक जिंदा हो जो करना हो कर लो, आगे का क्या ठिकाना, आत्मा परमात्मा तो सब कल्पनाएं हैं, ऐसी सब बातें जो रहती हैं, इसको जैन मुनि नहीं कहेंगे। तत् जिन वचनम पालयितुम रक्षितुम ज्ञातुम वा, ये गतार्थास्ते ज्ञानार्था इति पाल धातु ज्ञानार्थेपि वर्तते अशक्य मानोपि, उस जिन वचन का पालन करने के लिए, पालन का अर्थ रक्षण भी होता है और जानना भी होता है, क्योंकि जितने जितने गति अर्थ वाले धातु होते हैं वे सारे ही ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए पाल धातु ज्ञानार्थे भी वर्तते, पाल धातु जो है वो ज्ञान के अर्थ में भी वर्तता है। पालन का अर्थ रक्षण करना भी होता है, पालन का अर्थ जानना भी होता है। तो जानने में जिनवाणी को भले समझ ना पा रहे हों, लेकिन बोलेंगे पूरी जिनवाणी है, अन्य मत की बात नहीं करेंगे। अशक्य मानोपी अशक्तोपि असमर्थोपि अपि शब्दात्, न केवलम शक्तोपि अपि, न वक्ति न वदति न भाषते, समर्थ हो तो भी नहीं बोलेंगे और समझने में जानने में असमर्थ हो तो भी वो अन्य इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जिन वचन ही कहेंगे। किंतत और क्या नहीं बोलते हैं, तो बोलते अलीकम मृषा वचन, झूठे वचन नहीं बोलते, असत्यम न वक्ति। केन किस प्रकार से, व्यवहारेण, व्यवहारेण में क्या, व्यवहार से, दत्ति प्रतिग्रह भोजनादि व्यापारेण, दान है प्रतिग्रह यानी प्रगाहन है, और भोजन आदि की प्रवृत्तियों में भी असत्य नहीं बोलते। अथवा पूजा प्रभावनाद्यर्थम अलीक वचनम न बदति, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पूजा प्रभावना के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे साधु। पूजा और प्रभावना, अपनी पूजा हो जाए या अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए या फिर प्रभावना आदि के लिए भी साधु झूठे वचन नहीं कहते। अपशब्दात न केवलम अव्यापारेण, अपशब्द का मतलब यदि प्रवृत्ति न भी कर रहे हो तो भी झूठ नहीं बोलेंगे, और प्रवृत्ति कर रहे हो तो भी झूठ नहीं बोलेंगे। तथा ही सत्सु, उसका खुलासा ऐसा है कि सत्सु प्रशस्तेषु दिगंबरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु श्रेष्ठेषु लोकेषु साधु वचनम समीचीन वचनम यत् तत् सत्यमिति उच्यते, सत्य धर्म के उपदेश में हमने यहाँ पर इस वर्ष कहा था कि सत, सत का अर्थ होता है प्रशस्त। अब प्रशस्त में दिगंबर महामुनि भी हो सकते हैं, तत् उपासक उनके उपासक भी हो सकते हैं, श्रावक भी हो सकते हैं। च श्रेष्ठेषु लोकेषु, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं उनमें जो साधु वचन यानी समीचीन वचन बोला जाता है उसको यहाँ पर सत्य धर्म कहा गया है। संत प्रव्रज्ञां प्राप्ता, संत किनको कहते हैं, जो दीक्षा को प्राप्त कर चुके हैं। तद भक्ता वा, और उनके भक्तों को भी सत्पुरुष कह सकते हैं। ये वर्तन्ते तेषु यद वचनम साधु तत् सत्यम, उनके प्रति जो अच्छा वचन बोला जा रहा है, धर्म वचन बोला जा रहा है, वो सत्य धर्म है। तथा च और ज्ञान चारित्रादि शिक्षणे प्रचुरमपि अमितमपि वचनम वक्तव्यम, ज्ञान और चारित्र की शिक्षा देते समय गुरु को ज़्यादा भी बोलना पड़ता है, अमितम मतलब सीमित नहीं है, अधिक भी बोलना पड़ता है, तो वो भी सत्य धर्म में आएगा। भाषा समिति में क्या होता है कि बोलना तो पड़ता है लेकिन भाषा समिति में हित मित और प्रिय, हितकारी वचन बोलना पड़ेंगे, मित यानी सीमित बोलना पड़ेगा और प्रिय यानी मधुर बोलना पड़ेगा। यहाँ पर सीमित बोलने का नियम नहीं है, हितकारी बोलेंगे लेकिन सीमित बोलने का यहाँ पर नियम नहीं है। सत्य सद्भाव दशविध नाम है, सत्य का जो सद्भाव है वो 10 प्रकार का है। कौन से 10 प्रकार के सत्य हैं, तो बोले नाम सत्य, रूप सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संवित्ति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य, समय सत्य, और बस ये 10 भेद है सत्य भेदे में। तत्र अब उसका खुलासा देखिए क्या है, नाम सत्य किसको कहते हैं, सचेतन इतर द्रव्यस्य असत्यर्थे, चेतन अथवा अचेतन कोई पदार्थ हो उसमें वो अर्थ घटित न हो रहा हो लेकिन यद व्यवहारार्थम संज्ञा करणम, लेकिन फिर भी व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया है, तन नाम सत्यम, वो नाम सत्य है। जैसे किसी बच्चे का नाम रख दिया इंद्र कुमार, इंद्र रख दिया नाम, तो इंद्र वो इंद्र थोड़ी है। इसी प्रकार किसी बच्चे का नाम शेर सिंह रख दिया, अब शेर सिंह, शेर और सिंह नहीं है वो, लेकिन फिर भी नाम होता है काम चलाने के हिसाब से। किसी का अशोक नाम रख दिया, चेहरा लटका रहता है दिन भर उदास, हमेशा शोक करता रहता है, लेकिन नाम अशोक है। किसी का नाम हीरा लाल है, कोयले की दुकान चल रही है, हीरा लाल, न हीरा है और न लाल रंग है, वहाँ पूरा काला काला है कोयला। इसी प्रकार किसी का नाम हसमुख है और चेहरा बिल्कुल हंसता नहीं, कभी नहीं हंसता जीवन में, हसमुख नाम है। ऐसे नाम जो काम चलाने के लिए रखे जाते हैं असत्य अर्थ है, उसका अर्थ भले ना हो उसमें, घटित ना हो रहा हो। महावीर भगवान का नाम जो था वो तो यथार्थ में महावीर थे, लेकिन आजकल अगर किसी का नाम महावीर रख दो तो चूहे से घबरा जाए या और किसी कारण से डर जाए, तो वो वीर भी नहीं है लेकिन बोलने में महावीर आ जाता है, तो ये नाम सत्य है। फिर यदर्था सन्निधाने पे, अब कोई पदार्थ न होते हुए भी रूप मात्रेण उच्यते तद रूप सत्यम, लेकिन रूप मात्र से उसको कहा जाता है उसको रूप सत्य कहते हैं। यथा जैसे चित्र पुरुषादिशु असत्यपि चैतन्योपयोगा दौ अर्थे पुरुष इति, जैसे चित्र में फोटोग्राफ में कोई पुरुष आदि हैं तो उनके बारे में कह दिया कि ये वो है, तो ये उसमें वहाँ पर वो नहीं है, चेतना आदि से युक्त तो वो पदार्थ कहाँ है, लेकिन फिर भी फोटो में उसकी आकृति देखकर रूप को देख करके बस वैसा कथन हो जाता है, तो ये दूसरे प्रकार का रूप सत्य कहलाता है। पहला नाम सत्य, दूसरा रूप सत्य, फिर तीसरा कौन सा है, असत्यप्यर्थे पदार्थ न होते हुए भी यत कार्यार्थम स्थापितम, जो किसी कार्यवश स्थापना कर दी, द्यूताक्ष सारी निक्षेपादिशु तत्स्थापना सत्यम, जैसे शतरंज वगैरह खेलते समय उसमें हाथी की स्थापना कर दी। अब हाथी वहाँ पर इतनी छोटी जगह में तो रह नहीं सकता हाथी, लेकिन हाथी है, ऊँट है, घोड़े हैं, वजीर है, राजा है और प्यादे हैं, और दोनों के हैं, मतलब सामने जो बैठा उसके भी सफ़ेद वाले और इधर वाले के काले हैं, या फिर इधर के सफ़ेद उधर के काले हैं, तो इस प्रकार जो स्थापित कर देते हैं कि भाई ये घोड़ा है, ये ऐसा है वैसा है, तो इसका नाम है स्थापना सत्य। च चंद्रप्रभ प्रतिमा इत्यादि, जैसे चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा है, चंद्रप्रभ भगवान नहीं है लेकिन फिर भी वैसी स्थापना की गई है। तो ये तीसरा सत्य हो गया, स्थापना सत्य। पहला कौन सा था? नाम सत्य। दूसरा रूप सत्य। तीसरा स्थापना सत्य। फिर चौथा कौन सा है? देखिए, साध्यनादीन नौपिशमिकादीन भावान। अपने जो भाव होते हैं जीवों के, वो सादि भी होते हैं, अनादि भी होते हैं, औपशमिक आदिक भाव होते हैं। इनको प्रतीत्य अपेक्षित करके, दृष्टि में रखकर, यद वचनम तत् प्रतीत्य सत्यम, जो वचन बोला जाता है वो प्रतीत्य सत्य है। पुरुषस्ताल इत्यादि, ये पुरुष ताड़ के पेड़ जैसा ऊंचा है। तो ये किसी अपेक्षा से तुलना करके वैसा कह दिया कि तुम तो इतने लंबे होते जा रहे हो कि बिल्कुल खजूर के पेड़ बन रहे हो, ऐसा कुछ भी। पुरुषस्ताल इत्यादि। फिर यत लोक संवृत्त्यागतम, नहीं, यत लोक संवृत्त्यागतम वचस तत् संवृत्ति सत्यम, जो लोगों की संवृत्त्यागतम, संवृत्ति से आया हुआ है वचन, वो संवृत्ति सत्य है। यथा जैसे पृथिव्याद्यनेक कारणत्वेपि सति पंके जातम पंकजम इति, माने लोगों ने जैसा स्वीकार कर लिया, पंकज यानी कमल। अब भले वो सिर्फ पंख यानी कीचड़ से न पैदा हुआ, वो पानी भी चाहिए उसको, हवा भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन फिर भी उसको क्या कह दिया? पंकज, पंख से जन्मा हुआ, कीचड़ से पैदा हुआ। तो कमल को जो होता है पंकज बोला जाता है, पंख यानी कीचड़। तो उसमें एक की मुख्यता कर दी, कीचड़ की। जलज भी कह देते हैं कभी, जल से पैदा हुआ। अब अकेले जल से थोड़ी होता है कमल, फिर अपने मटके वटके सब जगह कमल होने लग जाए अगर अकेले जल से होता हो, जहाँ जहाँ जल है वहाँ वहाँ कमल होगा, लेकिन नहीं, उसके कई कारण हैं। फिर भी एक की मुख्यता से वैसा कथन कर देना और वो लोग स्वीकार कर लेते हैं उसको, तो उसको पंकेज, पंकज कहते हैं। ये पांचवा सत्य हो गया, संवित्ति सत्य। फिर धूप चूर्ण वासनानुलेपन प्रकर्षादिशु पद्म मकर हंस चक्र सर्वतो भद्र क्रौंचव्यूहादिषु अचेतनेतर द्रव्याणां यथा भाग विधानम सन्निवेश आविर्भावकम यद वचस तत् संयोजना सत्यम। संयोजना सत्य का मतलब क्या है? कि धूप की जो चूर्ण है वो, फिर वासनानुलेपन, उसके जो सुगंध है, उसके जो अनुलेपन है, इनकी प्रकर्षता आदि को लेकर, अधिकता को लेकर, उनमें जो पद्म मकर हंस चक्र सर्वतोभद्र क्रौंच व्यूह आदि जो चीज़ बनाई गई हैं, उनमें अचेतन या चेतन द्रव्यों का यथाभाग से विधान कर देना, वो सन्निवेश आविर्भावकम, उनके सन्निवेश को प्रकट करने वाला जो वचन है वो संयोजना सत्य है। मतलब ये हो गया कि आपने कोई डिज़ाइन बना दी बहुत बड़ी और उसमें सब चूर्ण वगैरह सारी चीज़ें लगा लगा करके बैठा दी। अब उसमें कह दिया कि ये जो है ये कलश है, फिर ये श्री है, ये ओम है, और ये वो है, सब अलग अलग विभाजित कर दिया, ये संयोजना सत्य हो गया। फिर द्वात्रिंशत जनपदेशु आर्यानार्य भेदेशु, 32 जो जनपद होते हैं वो आर्य और अनार्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनमें धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रापकम यद वचस, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कराने वाला वचन है, तद जनपद सत्यम, वो जनपद सत्य कहलाता है। राजा राणक इति, जैसे राजा को राणक कहते हैं किसी जनपद में, तो फिर वो वहाँ के लिए सत्य है। वहाँ राणक कहोगे तो फिर राजा समझ में आ जाएगा, इस प्रकार। फिर आठवां सत्य कौन सा है? ग्राम नगर राज गण, क्या है? कौन सा छूटा? कुछ छूटा? अच्छा, उसका नाम बोल रहे हैं आप, ठीक है, देश सत्य। तो ग्राम नगर राज गण, पाषंडी, जाति, कुलादि धर्माणाम उपदेशकम यद्वचस तद देश सत्यम। देश सत्य उसको बोलते हैं कि जो गांव के बारे में, नगर के बारे में, राजगण के बारे में, पाखंडी यानी साधु के बारे में। पाखंडी शब्द पहले साधुओं का वाचक था, अभी आजकल तो जो ढोंगी बाबा होते हैं उनको पाखंडी बोलते हैं, बदनाम हो गया शब्द आगे चल करके। जाति है, कुल आदि है, इन धर्मों का जो उपदेश करने वाला वचन है वो देश सत्य है। ग्रामो वृत्यावृत इत्यादि, जैसे ग्राम की परिभाषा बता दी। ग्राम किसको कहते हैं? वृत्यावृत, जिसके चारों ओर एक बाउंड्री हो और ऐसे एक घेरा हो और अंदर कुछ लोग कुटिया या मकानों में रहते हों, उसको गांव कहते हैं। और नगर किसको कहते हैं? कि जिसके चार गोपुर द्वार हो, तो चार द्वारों वाला नगर कहलाता है। इसी प्रकार राज्य किसको कहते हैं? और सब इन सब की बात जानकारी देने वाला देश सत्य है। फिर नौवा सत्य कौन सा है? भाव सत्य। क्या है भाव सत्य? छद्मस्थ ज्ञानस्य, छद्मस्थ के ज्ञान का, द्रव्य याथात्म दर्शने भी, द्रव्य की यथार्थता का दर्शन होने पर भी संयतस्य, छद्मस्थ का ज्ञान जिनके पास है ऐसे संयमी मुनि, अथवा संयता संयतस्य वा, संयता संयत कोई श्रावक हो उनका भी, स्वगुण परिपालनार्थम अपने गुणों की रक्षा करने के लिए, प्रासुकमिदम अप्रासुकमिदम इत्यादि यद्वचस, ये प्रासुक है माने मेरे सेवन के योग्य हैं और अप्रासुक यानी मेरे अयोग्य हैं, ऐसे जो वचन होते हैं वो भाव सत्य हैं। फिर दसवां सत्य कौन सा है? समय सत्य। प्रतिनियत षट द्रव्य पर्यायाणाम, जो सुनिश्चित एक एक द्रव्य हैं, छह द्रव्य हैं, उनकी पर्यायों का, आगम गम्यानाम, कैसी हैं वो पर्याय? आगम गम्य है माने शास्त्रों से जानने योग्य हैं, उनका यथात्म्य आविष्करण, यथार्थ रूप से आविष्करण करना, प्रकट करना, ऐसा जो वचन है यद वचनम तत् समय सत्यम, वो समय सत्य यानी आगम सत्य है, शास्त्रीय सत्य है। समय उत्तर वृद्धा बालो युवा पल्लोकम इत्यादि, जैसे समय की अधिकता से बाल युवक बन जाता है और फिर समय को बढ़ाते जाओ तो फिर वर्षों का ही हिसाब बढ़ते 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 कभी पल्लोकम बन जाता है, फिर सागरोपम भी बन जाता है, ऐसा है ये शास्त्रीय सत्य हो गया। सत्यवाचि प्रतिष्ठिता सर्वगुण संपदा, सत्य वचन में ही सब गुण, सब गुण और सब संपदाएं प्रतिष्ठित रहती है, विराजित होती है। अनृताभिभाषणम अनृताभिभाषीणम नरम, झूठ बोलने वाले मनुष्य को बांधवो प्यवमन्यन्ते, बंधुजन भी रिश्तेदार भी उसको अवमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, उसकी निंदा आलोचना करते हैं, ये क्या बोल रहा है, ये तो इसकी बातों पर तो कोई भरोसा ही नहीं, कुछ का कुछ बोलता है, कभी बिल्कुल झूठा है, बोले झूठ बोलने वाले की ये अदालत होती है, उसके रिश्तेदार भी उसकी बात को सच नहीं मानते, उसका अपमान करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं। मित्राणि च विरक्त विरक्ति भाव अपने उपयान्ति, और मित्रों को भी उसके प्रति राग नहीं रहता, वैराग्य हो जाता है। झूठ बोलने वाले के प्रति जो उसके दोस्त होते हैं वो भी उसके प्रति विरक्ति भाव को प्राप्त होते हैं। और विषाग्न्युदकादीनि अपि एनं न सहन्ते, जहर है, अग्नि है और जल आदि भी झूठ बोलने वाले को नहीं सहन करते, उसको बिल्कुल ठिकाने लगा देते हैं। और सत्यवादी को विष, अग्नि और पानी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। देखो सीता का दृष्टांत आता ही है। और क्या होता है? जिह्वा छेदन सर्वस्व हरणादि व्यसन भाग भी भवती थी। झूठ बोलने वाला उसको कई बार राजा लोग जीभ काट देते थे झूठ बोलने वाले की, सर्वस्व हरण उसका सारा धन लूट लेते थे, आदि संकटों को भी वो प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्य की महिमा है। तो सत्य धर्म और भाषा समिति, इसमें अंतर समझ में आया? भाषा समिति में हित मित प्रिय वचन है, सत्य धर्म में हित वचन तो है लेकिन मित और प्रिय वचन का नियम नहीं है। अगर गुरु शिष्य को डांट रहे हैं कुछ बात समझाने के लिए तो भी वो सत्य धर्म में आएगा। भाषा समिति भले ना हो लेकिन भाषा समिति का सर्वकाल नियम। और दूसरी बात क्या बताई थी कि सत्य धर्म सिर्फ साधुओं और श्रावकों के बीच बोला गया वचन है, और भाषा समिति जो है जैन जैनेतर मुसलमान कोई भी हो सबके साथ जो बात करते हैं साधु वो सामान्य जो वार्ता का क्रम होता है हितकारी वचन सीमित वचन और प्रिय वचन बोलते हैं, ये भाषा समिति है। तो भाषा समिति और सत्य धर्म में इतना अंतर है। अब यहाँ सत्य धर्म में आप वो मत लगा लेना कि परम सत्य जो मोक्ष है अथवा शुद्ध निश्चय से जो आत्मा का स्वरूप है वो परम सत्य है, वही सत्य धर्म है, ऐसा उल्टा सीधा अर्थ मत लगाओ। यहाँ पर जो प्रकरण है उसके अनुसार सत्य धर्म का जो अर्थ बतलाया गया है उसको वैसा का वैसा ग्रहण करो। संयम धर्म वाचष्टे, संयम धर्म को बतलाते हैं। जो जीव रखण परो गमणा गमणादि सब कजेसु तण छेदम पिण इच्छति संयम धम्मो हवे तस्। जो जीवों की रक्षा करने में तत्पर है किस समय, तो बोले गमन करते समय, आगमन करते समय और आदि शब्द से और बाकी कार्य करते समय, सब कज्जे सभी कार्यों में जो जीवों की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं, और तण छेदम पिण इच्छति और चटाई के तिनके के टुकड़े को भी तोड़ना नहीं चाहते, माने कोई भी इस प्रकार की व्यर्थ की प्रवृत्ति जो नहीं चाहते, तस संयम धम्म हो गए, उनके पास ये संयम धर्म होता है। तस मुनि संयम भाव संयमनम वशीकरणम, उन मुनि के पास संयम भाव होता है। संयमन का अर्थ होता है वशीकरण, वश में करना किनको, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्रेन्द्रिय मनसाम, पांच इंद्रिय और मन को, और षट पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति काय वनस्पति त्रस काय का नाम रक्षणंच, छह प्रकार के काया वाले जो जीव होते हैं पांच स्थावर और एक त्रस, उनकी रक्षा करना भी संयम है। तस्य भाव परिणाम भवेत, उनके वो परिणाम होता है संयम रूप। तस्य कस्य, वो कौन होता है कैसे होते साधु, यह साधु जुग साधु गमनागमनादि सर्व कर्मसु, गमनम अटनम परिभ्रमणम आगमनम आगति, गमन यानी जाना आगमन यानी आना, आदिम ते द्वे आयव एव आदिरीशां तानी, ये दो आदि में रख लो और बाकी आदि शब्द से और दूसरे कार्य, तानी सर्व कर्माणि उन सब कार्यों में च समस्त कार्याणि च तेषु गमनागमन परिभ्रमणोपवेशन शयन आदान निक्षेपण भोजन मलमूत्र निक्षेपण आदिषु कार्येषु जीव रक्षण पर, इतने सारे कार्यों में जीवों की रक्षा करने में जो सावधान रहते हैं, प्राणी रक्षा परायण है, प्राणियों की रक्षा में परायण रहते हैं, सतर्क रहते हैं, दया परिणत है, दया में परिणत रहते हैं, पृथ्वीव्यप तेजो वायु वनस्पति कायिक कृमि कीट भू लता दि यूका मत्कुण कीट कीटक कुंथवादि दंशमशक पतंग मक्षिकादि गो महिष अश्व मनुष्य देवादि त्रस जीवानाम रक्षण पर है। देखो सब जीवों की रक्षा करने में तत्पर है साधु, इसमें एक चीज़ और लिखी है, तो कितनी लंबे लिस्ट बना दी, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये पांच स्थावर हो गए, फिर कृमि ये दो इंद्रिय वाला जीव हो गया, कृमि कीट कीट यानी कोई दूसरा कीड़ा, फिर भू यानी अच्छा भूलता, भूलता एक प्रकार का जीव होगा आदि, फिर यूका, यूका मतलब जुआ जो बालों में हो जाते हैं ना वो, फिर मत्कुण का अर्थ होता है खटमल, माकड़ बोलते गुजराती में, कीटक कीटक यानी और कीड़े जो दूसरे हैं, कुंथ आदि कुंतु सबसे छोटा तीन इंद्रियों वाला जीव होता है, फिर दंश मशक, दंश का अर्थ होता है बड़ी साइज वाला मच्छर, मशक यानी छोटा वाला मच्छर, पतंग पतंग यानी जो रात को बिजली के प्रकाश को देख करके आने वाले जीव जंतु या दीपक में आने वाले, उर्दू में परवाना बोलते हैं उसको पतंग, यहाँ जो गुजराती में जिसको पतंगिया बोलते हैं वो अलग है, वो तो तितली है, लेकिन यहाँ पतंग का अर्थ पंख वाला वो कीड़ा जो प्रकाश की ओर आकृष्ट होता है, मक्षिका, मक्षिका मक्खी, अनेक प्रकार की मक्खियां आदि, फिर गो गाय, महिष यानी भैंस, अश्व यानी घोड़ा, मनुष्य यानी मनुष्य, और देव आदि, देवों की भी रक्षा करने साधु, उन जीवों की रक्षा करने में तत्पर मुनि, जो मुनि होते हैं, देवों की रक्षा कैसे करें, द्रव्य से, भाव से, किससे, कैसे करेंगे देवों की रक्षा, साधु कैसे करें? अगर कोई देव कोई ऐसी गलती कर रहा हो जिससे उसकी दुर्गति होने वाली हो, तो उसको उपदेश देकर के रक्षा कर सकते हैं, दुर्गति से बचा सकते हैं। एक कथा आती है क्षुल्लक महाराज की, और उनके साथ उनकी बहन थी क्षुल्लिका, अभय रुचि क्षुल्लक थे और अभय मति उनकी बहन क्षुल्लिका थी। तो इन दोनों को बलि चढ़ाने के लिए राजा मारीदत्त ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए एक कौलिक यानी एक तांत्रिक के उपदेश से पकड़वा लिया। सब प्राणियों के युगल चाहिए थे, तो चंडमारी देवी, चंडिका देवी के मंदिर में अगर उन सब प्राणियों के युगल की बलि चढ़ाई जाए, तो उस तांत्रिक का कहना था कि इतनी बलि अगर मंत्रोच्चारण पूर्वक चढ़ा दोगे तुम, तो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो फिर क्षुल्लक क्षुल्लिका को जब ले गए पकड़कर, तो क्षुल्लक जी ने अपनी बहन से बोला कि बहन तुम डरना मत, ये ठीक है बलि चढ़ाने ले जा रहे हैं और अपना जीवन तो नश्वर है, अपन संयम के साथ प्राण छोड़ेंगे, घबरा करके संकलेश के साथ नहीं मरना है, बोले मरेंगे तो मरेंगे लेकिन मरने से डरना नहीं। देखो अब क्या होता है, वो भी अभी अपन मरने का क्यों सोचे, देखते हैं आगे क्या समय कैसा पलटा खाता है। और वहाँ जा करके मारीदत्त राजा को उनने छोटी उम्र वाले क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को देख करके एकदम थोड़ा सा स्नेह जैसा हुआ, पूछा कि आपने इस उम्र में कैसे दीक्षा ले ली। तो फिर क्षुल्लक जी ने बोला कि तेरे जैसे हिंसक राजा को मैं क्यों उत्तर दूं कि हमने क्यों दीक्षा ली, तू क्यों पूछ रहा है हमसे, तेरे को क्या करना है। और फिर इस तरीके से पूछा जाता है, अगर किसी चीज़ की तुमको जानकारी चाहिए तो फिर सम्मानपूर्वक पहले बैठा लो ठीक से और उसके बाद में फिर निवेदन करो कि अब बताइए कि क्या कारण। तो फिर उनने बैठा ला और फिर निवेदन किया, तब फिर जो क्षुल्लक महाराज जी ने उपदेश दिया है, उस उपदेश को सुनकर राजा की तो बात छोड़ो, जिस देवी को ये लोग बड़ी चढ़ा रहे थे वो चंडिका देवी एकदम साक्षात प्रकट होकर क्षुल्लक जी के चरणों में गिर पड़ती, बोले कि आज तक मैं भी इस भ्रांति में थी कि बलि चढ़ाने से इन लोगों का धर्म होता है और फिर मैं प्रसन्न होती थी इनके प्रति, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि बलि चढ़ाने का क्या प्रचंड परिणाम होता है, कितना भयंकर दुष्परिणाम होता है। एक बार इनने क्षुल्लक जी ने बताया ना कि मैंने 6 भव तिर्यंच योनि में भयंकर कष्ट भोगे हैं, उसके पहले मैं राजा था, मेरा नाम यशोधर था और ये जो मेरी बहन है ये मेरी माँ थी उस जन्म में, चंद्रमती इनका नाम था, और उस समय इसके कहने से मैंने एक मुर्गे की बलि चढ़ाई, लेकिन वो आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई और उसका जो फल हमें भोगना पड़ा है, आप तो इतनी बलियां चढ़ा रहे हैं देखना आपका क्या होता है। तो उनकी तो बिल्कुल बुद्धि पलट गई और फिर वो सबसे पहला आश्चर्य तो राजा मारीदत्त को ये हुआ, वर्णन सुना उन्होंने जब पूरा, और फिर देवी ने आकर के जब क्षुल्लक जी के चरणों में नमस्कार किया, और सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने जो यशोधर चरित्र लिखा है उसमें ये उल्लेख है कि देवी ने आकर के अर्घ्य समर्पित किया और सम्यक तो धारण किया, फिर वो बोलती है कि आपको अगर किसी विद्या की आवश्यकता हो तो मैं आपके ऊपर मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में विद्या देना चाहती हूँ, आप स्वीकार करके मुझ पर कृपा करो। तब क्षुल्लक जी ने कहा कि तुमने जो मुझे अर्घ्य चढ़ा दिया और तुमने जो सम्यक तो धारण कर लिया वही मेरी दक्षिणा हो गई, बोले गुरु दक्षिणा। फिर जब सुदत्ताचार्य आए उनके गुरु वहां पर, तब क्षुल्लक जी ने उनके चरणों में नमस्कार किया, तब राजा ये सब देख करके अचकित हो गया, सारी प्रजा मुझे नमस्कार करती है, मैं देवी को नमस्कार करता हूँ, देवी क्षुल्लक जी को नमस्कार करती है, क्षुल्लक जी मुनि महाराज को नमस्कार करते हैं, मुनि महाराज आचार्य को नमस्कार करते, फिर ये किनको नमस्कार करते होंगे। तब उसके अंदर महिमा आई कि ओहो जिनेंद्र भगवान इतने महान है कि जिस देवी को मैं नमस्कार करता हूं वो देवी उनके सबसे छोटे जो साधु पद वाले होते हैं वो क्षुल्लक कहलाते हैं, क्षुल्लक का अर्थ छोटे, उनको देवी नमस्कार करती है, और क्षुल्लक जी साधुओं को नमस्कार करते हैं, आचार्य को नमस्कार करते हैं, और आचार्य जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। बस उसकी बुद्धि भी पलट जाती है और फिर पूरा वातावरण, पूरी कथा पढ़ने लायक। हमने आपसे कहा भी था कि ब्रह्मचारी जी के पास वो कथा है, आपके पास, आपको अगर पढ़ने की रुचि हो तो फिर देख लेना, अभी जितना समय है उतने में।